जय शिवाय। एक प्रश्न काफी समय से पूछा जा रहा है मुझसे, कई बार लोग पूछ चुके हैं, बट उसको आंसर करने का टाइम आ जाया है। तो प्रश्न ये है कि पूरे विश्व में देखा जाए तो, और स्पेशली भारत में, ये फीमेल गुरु इतनी कम क्यों है? नारी देहधारी गुरु जो है, नारी की देह जिनके पास है, ऐसी महिला गुरु इतनी कम क्यों है? ये क्वेश्चन है, ये प्रश्न है। और इसका जो सोच विचार कर इसका जो उत्तर है वो बहुत ही कड़वा है, बहुत ही दुखद स्थिति है। ठीक है, तो आज अगर आप अपनी बुद्धि में चेतना के केंद्र को नहीं बनाकर बैठे हैं, चेतना में बुद्धि को रख के, बुद्धि को चेतना में रख के नहीं बैठे हैं, या आपने वो जो पहला मेरा इससे पिछले वाला वीडियो जो रिलीज हुआ था फ्राइडे को कि चेतना का केंद्र कहाँ होना चाहिए, तो अगर वो सब आज करके नहीं बैठे हैं तो ये वीडियो देखकर बहुत दुख होने वाला है, ठीक है, आज का। और गलत ना समझें उस चीज को, तो उसके लिए बुद्धि से और विवेक से बात को समझें, बात को सुने और विचार करें उसके ऊपर। ठीक है, अभी हम बात करेंगे कि बात महिला गुरु की नहीं है सिर्फ। ठीक है, हम एक बहुत ही अच्छा सा आंकड़े उठाएंगे, डाटा उठाएंगे और फिर देखेंगे, फिर बात करेंगे कि एक्चुअली भारत में सिर्फ महिला गुरु नहीं, बल्कि किसी भी तरह के उसमें चले जाओ, आप फील्ड में चले जाओ, ठीक है, और टीचर में चले जाओ, साइंटिस्ट बनने में चले जाओ, प्रोफेसर में चले जाओ, लॉ में चले जाओ, कोई भी फील्ड उठा लो आप, कोई भी फील्ड, किसी भी क्षेत्र में महिला वर्कफोर्स नाम मात्र के लिए है। ठीक है, और डाटा सुनाती हूं मैं आपको उसके लिए। भारत के परिपेक्ष में ही मैं ये वाली बात ज्यादा बोलूंगी, क्योंकि विश्व के, पूरे विश्व के सारे देशों में, जहां भारत को हम एक बहुत ही प्रगतिशील देश बोल रहे हैं और हिंदुत्व का केंद्र बोल रहे हैं, एक धर्म का स्थान बोल रहे हैं, वहां ऐसा हो रहा है। ठीक है, और आप ऐसा, मैं कोई ऐसा नहीं बता रही जो आप वेरीफाई नहीं कर सकते। आप ये सारे आंकड़े उठाइए स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स की जो मंत्रालय है, जो वहां पर वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं आप, गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, आपको सब जगह मिल जाएगा ये डाटा। ऐसा कोई छिपी हुई बात नहीं बता रही हूं मैं आपको। तो और भारत के परिपेक्ष में मैं ये वाली बातें ज्यादा बोलूंगी, क्योंकि वहीं पर ही प्रॉब्लम सबसे बड़ी है। ठीक है, 1990 के दशक में जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट था वो करीब 40-45% था, 45% के आसपास था। ठीक है, भारत में वो जमाना था, वो टाइम था जब इतनी ज्यादा सुविधाएं नहीं थी महिलाओं के पढ़ाई करने के लिए, काम करने के लिए, और इतनी पॉलिसीज नहीं थी, इतना सब कुछ नहीं था, और सारी उस टाइम पे सारी महिलाएं, 40-45% महिलाएं काम ही कर रही थी। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कैसे निकाला जाता है, वो ये देखते हैं कि क्या आप कोई ऐसा काम करते हो जिससे आय और आमदनी होती है। ठीक है, और उस टाइम के 90 के दशक के जो बच्चे पाल रही थी वो गृहिणियां, जो काम कर रही थी और जो घरों में बच्चे पाले जा रहे थे, वो जनरेशन है हमारी जो कि भारत से निकलकर कहीं कहीं पूरा दूर पहुंच गई, सब जगह पे, एक जगह पे झुंड नहीं लगाया, एक ही जगह पे इतना, इतनी त्रासदी, वो जमीन, वो सारा एनवायरनमेंट, वो सारे रिसोर्सेस नहीं झेल रहे हैं, बाहर निकल गए बहुत सारे लोग। तो तब तो 40-45% था, अभी 1990 से लेके आप क्या बोलोगे आज की डेट में 2022 में, क्या बोलोगे कि प्रगति हुई है? हाँ हुई है। कितने सारे नए पॉलिसीज, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, प्राइवेट कॉरपोरेशंस की पॉलिसीज सुधरी है ना, पहले तो इतनी अच्छी नहीं थी। पहले हम काम करने जाते थे तो कोई एक आधी महिला मिलती थी हमको अपने पूरे, मैं जैसे अपनी बात करूं तो सॉफ्टवेयर की लाइन में कोई एक दो लड़कियां होती थी हमारी 30-35 लोगों की टीम में, 40 लोगों की टीम में, इतना ही कोई एक आध लड़की इंजीनियर होती थी और सॉफ्टवेयर इंजीनियर होती थी, उनमें से मैं एक होती थी, तो ऐसे था। तो अभी ये 2021 में 22 में ये भारत के अंदर ये रेट गिर के 16% कैसे आ गया? हर घर में बहुत सारी आमदनी हो रही है अभी, सारे लड़के सारे आदमी सारे पुरुष जो हैं वो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे, जो मिडिल क्लास का, मिडिल क्लास के का जो एक लेवल था आमदनी का, आय का जो एक लेवल था, इनकम का, वो बढ़ चुका है बहुत ज्यादा। और महिलाएं पढ़ बहुत ज्यादा नहीं है, अगर आप यूनिवर्सिटी और कॉलेज के अंदर देखोगे कि कितनी महिलाएं हैं, कितना पढ़ाई कर रही हैं, तो वो पढ़ाई बहुत कर रही हैं, इंजीनियर बनने जा रही हैं, आईटी में जा रही हैं, हर तरह की चीज में घुस रही हैं। फिर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन क्यों नहीं है, काम क्यों नहीं करने जाती पढ़ने लिखने के बाद? सोचिए इस बात को, 16% पे कैसे आ गया भारत? सोलह परसेंट पे कैसे आ गए? कोई बात नहीं करता है इस बारे में, मीडिया में कोई न्यूज नहीं छपती है, कुछ नहीं निकलता है। एशिया के सारे देश उठाइए, नेपाल में 83% है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, यूरोप में, यूरोप के अधिकांश देशों में टोटल मिला के एवरेज निकालेंगे यूरोप का ऑल टुगेदर सारे कंट्रीज को मिला के, तो उनका 10 साल पहले उनका फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट जो है वो 55% था, अभी 66 है। अमेरिका में 60% के आसपास है लगभग आज की डेट में, ऑस्ट्रेलिया में 72% है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। 5 साल में यहां पर मैं जितने जगह पे जॉब करने के लिए गई हूं आईटी में अपना, अभी भी अगर मैं अभी करंट एग्जाम्पल भी उठाऊं तो हमारे 30 लोगों की टीम में से 24 या 25 ऐसे हमेशा उतनी फीमेल्स रहती हैं टीम के अंदर, हर उम्र की, 22 साल से लेके और 55-60 साल तक की, हर एज ग्रुप की इतनी सारी फीमेल्स होती हैं ऑफिस के अंदर। तो बहुत सारी आय आ गई, बहुत सारी आमदनी आ गई, तो काम करने की क्या जरूरत है, काम करके क्या करोगी, ऐसे बोल सकते हैं क्या? नहीं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसे नहीं समझना चाहिए। मेरे साथ की अगर मैं अपने साथ के लोगों का आपको एग्जाम्पल दूं तो मेरे साथ में बहुत सारी जो हम लड़कियां थे, हम लोग सबने MCA किया है, और अच्छा अगर मैं अपने जीवन की ही बात करूं तो मेरे माता पिता दोनों डॉक्टर थे, तो वो तो यही चाहते थे कि मैं भी डॉक्टर बन जाऊं, लेकिन मैंने IT के फील्ड को चुना, तो मुझे उनको कन्विंस करने के लिए पापा की, अपने फादर की मेडिकल की किताबें पढ़ के सॉफ्टवेयर बना के दिखाना पड़ा कि इससे ये हो जाता है, जो मैं पढ़ रही हूँ प्रोग्रामिंग और जो चीजें मैं पढ़ रही हूँ उनसे सॉफ्टवेयर बनाया जा सकता है जो कि आगे चल के बहुत सारे कामों में बहुत सारे लोगों की मदद करेगा, देश को बदलेगा, समाज को बदलेगा, जीवन को आसान बनाएगा। तो मुझे अपने पापा को कन्विंस करना पड़ा मेरी फीस दिलवाने से पहले कि नहीं IT क्यों करना है, उनको लगा ही कोई कुछ, तो उनको उस जमाने में उनको लगा कि ये तो डाटा एंट्री ऑपरेटर बन जाते हैं ये सब पढ़ के, और क्या बेकार की एजुकेशन है ये, क्या बेकार का काम है ये, तो उनको समझाने के लिए तो वहां से मुझे फाइट करनी पड़ी। मैंने आर्मी की ट्रेनिंग भी करी और मैं उस घर से बिलोंग करते हूं, वो घर से हूं जहां पर कि मेरी दादी 1919 के जमाने में वो पैदा हुई थी और 1930s के जमाने में वो स्वतंत्रता सेनानी थी, और जब ब्रिटिश के बहुत सारे मैसेजेस को डीकोड करना पड़ता था तो उनके ग्रुप में किसी को इतनी अच्छी अंग्रेजी नहीं आती थी, उन्होंने उस जमाने में एमए इंग्लिश किया और उसके बाद उनको लगा कि ये तो जेल भी चली गई, स्वतंत्रता सेनानी थी, जेल भी चली गई, और उसके साथ साथ उन्होंने सोचा कि सिर्फ एमए इंग्लिश करने से काम नहीं होगा, एमए पॉलिटिकल साइंस भी कर लिया उन्होंने। डबल एमए थी वो उस 1940 के जमाने की, जब पूरे भारत में लड़कियों को पढ़ाना, नौकरी कराना, मास्टर्स कराना तो बहुत दूर की बात है, जीवन एक संघर्ष था, आजादी से घर से निकलना सर्वाइवल एक संघर्ष था। आज सही सलामत जिंदा घर आओगे या कहीं पे पुलिस की गोली पड़ेगी या तुमको डंडे पड़ेंगे या मार दिया जाएगा, लटका दिया जाएगा, वो उस जमाने की थी। और बचपन से मैंने उनको स्कूल में प्रिंसिपल की तरह से देखा, वो स्कूल में प्रिंसिपल हुआ करती थी और फिर वो हमारे सामने रिटायर हुई, ग्वालियर के सिंधिया कॉलेज की रिटायर्ड प्रिंसिपल थी वो मेरी दादी थी। उनके साथ मैंने बहुत वक्त गुजारा, बहुत किस्से कहानी सुने उनके संघर्ष के, उनके जीवन के, और हर बार मुझे उनके किस्से कहानी सुनकर यही लगा कितनी वीर बहादुर थी वो, कितना करेज था उनके अंदर, कितना साहस था उनके अंदर हर चीज से लड़ जाने का। मेरी नानी ने भी वही किया। मेरे नाना जी की मेरे जन्म से पहले ही मृत्यु हो गई थी, तो उन्होंने भी अपने 5 बच्चे पाले, अपना पूरा काम किया और सारे बच्चे इंजीनियर बन गए, ये बन गए, वो बन गए, सब अच्छे अच्छे काम कर रहे थे, चाहे बेटियां हो चाहे बेटे हो। मेरी दादी ने भी वही किया, सब अच्छे से पढ़ लिए, ये नहीं कि वो नौकरी कर रही थी तो बच्चे कहीं देख नहीं पाई या कुछ नहीं कर पाई, और पहले बच्चे कम होते थे। मेरी दादी ने 9 बच्चे पैदा किए, 6 बच्चे जिंदा रहे। मेरी नानी ने 6-7 बच्चे पैदा किए, 5 बच्चे जिंदा रहे उनके। तो हम तो अब की बात कर रहे हैं, आजकल की नारियों की बात कर रहे हैं जहां पर 1 या 2 बच्चे हैं। तो वो कौन से कौन क्या क्या हो रहा है वहां पर, मेरी तो समझ में भी नहीं, मेरी तो समझ के बाहर की बात है कि क्या हो गया आजकल की नारियों को। क्या सिर्फ ये जो धारणा बन गई है कि घर में पैसा आएगा, चाहे वो आदमी कमा के लाएगा या पूछते नहीं पैसा है, घर में पैसा है तो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है पैसा कमाने के लिए, बाहर हम निकलते हैं, नौकरी हम करते हैं, समाज में अपना तन मन धन लगाते हैं और कुछ कमा के लाते हैं, तो वो चीज सिर्फ पैसे और बहुत जरूरतमंद लोग ऐसा करते हैं। जो पढ़े लिखे अच्छे लोग हैं वो पढ़ लिख के किटी पार्टी में जाते हैं, मूवीज में जाते हैं, यहां सब जाते हैं, लेकिन और बहुत सारे आदमी, बहुत सारे पुरुष आप में से ऐसे हैं, बहुत सारे पति ऐसे हैं जिन्होंने कि अपनी पत्नियों को काम करने जाने से इसलिए रोका क्योंकि क्या करना है, तुम काम करके क्या करोगी, पैसे तो मैं कमा ही रहा हूं, जैसे कि काम करना सिर्फ पैसे के लिए होता है, काम सिर्फ पैसे के लिए किया जाता है, पढ़ लिख कर बुद्धि का इस्तेमाल जो है वो धर्म को चलाने में, धर्म को स्थापित करने में, समाज को बदलने में, वो सब काम में नहीं किया जाता है। देश को, समाज को आगे बढ़ाने के लिए पढ़े लिखे लोगों की इतनी ज्यादा जरूरत है, जहां पर लड़कियां टॉपर होती हैं, बिल्कुल टॉप के नंबर लाती हैं, सब कुछ करती हैं, तो जॉब करने क्यों नहीं जाती या अपना कुछ काम स्टार्ट क्यों नहीं करती, कुछ भी क्यों नहीं, योगदान क्यों नहीं करती समाज को, देश की इकोनॉमी को चलाने में, समाज की इकोनॉमी को चलाने में। और अगर ये एक बहाना है कि घर वालों की देखभाल कौन करेगा, तो क्या शादीशुदा होकर वो जब नहीं आई थी तब कोई देखभाल घर में किसी की कोई नहीं कर रहा था, तो वो कर्तव्य रह जाता है क्या? नहीं रह जाता है, जितनी जरूरत है उतने काम सारे होते हैं। बच्चों को कौन देखेगा, तो बड़ा बच्चे दिख गए सारे आपके भारत के, सबसे ज्यादा कंप्लेन आती है मेरे पास आजकल की पीढ़ी को, क्या हो गया है, नई पीढ़ी सुनती नहीं है माँ बाप की और अपने चीजों में लगी रहती है, और सबसे ज्यादा नालायक पीढ़ी जो है वो यही बोली जाती है, जो आजकल मेरे बच्चे वाली जो पीढ़ी है। क्यों? तो फिर घर में रहकर बच्चे पाल रहे थे, घर में रहकर पूरा ध्यान अगर दिया जा सकता था और बच्चों को इतनी जरूरत थी आपकी, तो इतने चेतनाहीन बच्चे क्यों हैं, फिर इतनी शिकायत क्यों है, फिर वृद्धाश्रम बढ़ क्यों गए भारत में? यही जनरेशन है ना वो, जिसके लिए इतना, फिर वो संस्कार देने के लिए घर में रुके थे अगर, तो बच्चों में वो संस्कार है क्यों नहीं? अरे रोटी देना बच्चे को, कपड़े देना, खाना देना, वो तो कोई भी कर सकता है। आप बाहर निकलकर समाज में कोई बड़ा अच्छा योगदान करेंगे, अगर कोई और काम करेंगे अगर, तो आपसे नीचे वाला जो इनकम का, आय का, आमदनी का, जो एक दूसरी कैटेगरी के लोग हैं, उनको भी मौका मिलेगा ना। कोई भी आपके घर में रोटी बना सकता है। भारत में तो कितनी सुविधा है। हम लोग तो अपनी बात कर रहे हैं, जो कि काम करने के लिए, सब कुछ करने के लिए बाहर के देशों में चले गए, जहां पर कि हमारे पास किसी तरह की कोई सुविधा नहीं होती। नौकरी भी करते हैं अपनी, सब कुछ करते हैं, उसके अलावा घर में आके सारे खाने भी बनाते हैं, क्योंकि मुझे खुद को खाना बनाने का शौक है और खाने का शौक है, और मैं बड़ा भारतीय खाना खाना पसंद करती हूँ, तो बनाने में जो वक्त लगता है लगता है। फिर बर्तन भी मांजने होते हैं, किचन भी साफ करना होता है, घर की सफाई भी करनी होती है, कार में हवा भी डलानी होती है, पेट्रोल भी डलाना होता है, टायर फट जाए तो अपना कार का टायर भी चेंज करना होता है, इमिग्रेशन है तो इमिग्रेशन की सारी प्रोसेसिंग और सारा पेपर वर्क हमेशा करते रहना होता है, वीजा के पेपर वर्क करने होते हैं, कितनी चीजें करनी होती है, बच्चों को यहां वहां ड्राइव करके ले जाना होता है, सारी जिम्मेदारियां पूरी होती है। तो ये कोई बहाना नहीं है, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि अरे फिर बच्चों को कौन देखता, घर वालों को, सास ससुर को कौन देखता। नहीं, वो दिख गए होते सब अपने आप, सारी सारी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से पूरी हो गई होती। क्यों, कैसे पूरी हो गई होती है अगर आप इतने बिजी होते तो? सोचने वाली बात है। क्यों कि आप जितना ज्यादा अपने आप को बिजी रखेंगे, काम करेंगे, जिस काम की कोई कीमत है, कोई वैल्यू है समाज के लिए, देश के लिए, किसी भी देश के लिए, किसी भी चीज के लिए, तो आप भावनाओं को चेतना का केंद्र नहीं बनाएंगे। आपकी चेतना का केंद्र बुद्धि रहेगी तो सारे काम बहुत स्पीड से और बहुत अच्छी तरह से हो जाएंगे। जहां जो पूरा होना चाहिए सब पूरा हो जाएगा। बच्चों को भी, बच्चों की भी भावनाएं, रो रहे हैं, ची ची मैं कर रहे हैं फालतू का, उसमें आप अपना दिमाग बुद्धि बेचा खर्च नहीं करेंगे। जब वो शांत हो जाएंगे तो उनके साथ जाके बुद्धि से बात की जाएगी, तो उनको भी पता चलेगा कि भावनाओं की कोई अहमियत होती नहीं है, भावनाओं से जीवन नहीं जिया जा सकता, एक सार्थक जीवन भावनाओं से नहीं जिया जा सकता, देह को, चेतना को, चेतना का केंद्र बनाकर भी नहीं जिया जा सकता। कितना ही कोई से ब्यूटी पार्लर चले जाओ, मेकअप कर लो, कपड़े पहन लो, कुछ भी कर लो, जो अंदर का एक सूनापन, जो एक खालीपन है, वो चेतना को भावना में रखने से और चेतना को उसमें रखने से नहीं भर सकता। कई सारी मेरे साथ की भारत में जो रह गई, वो जो सब लड़कियां थी, हम लोगों ने सब ने बहुत अच्छी पढ़ाई करी, सब कुछ करा, और मैंने पढ़ाई खत्म होने से पहले ही जॉब ले ली अमेरिका में, और मैं चली गई, और मैं 23 साल की उम्र के बाद से भारत में इतना दिन रही नहीं, और फिर पिछले 15-16 कितना अब तो ज्यादा हो गया 20 साल से तो बिल्कुल भी भारत में लगातार मैं कभी रही नहीं, और सब कुछ देखा, कई भाषाएं सीखी, कई भारतीय भाषाएं सीखी, कई विदेशी भाषाएं सीखी। जीवन को सार्थक बनाने के लिए जो करना था, दूसरा मास्टर भी किया, बहुत सारे उसके बाद भी डिग्री डिप्लोमे किए, बहुत सारे क्लासिफाइड प्रोजेक्ट पे, साइबर क्राइम में, साइबर सिक्योरिटी में, बहुत सारी चीजों में बहुत अच्छा सा काम भी किया, 3-4 आईटी की कंपनियां खोलकर वो भी चला ली जॉब के साथ साथ। 14 साल शादीशुदा भी थी मैं, ऐसा नहीं कि शादी के 2-3 साल में मैंने तलाक ले लिया, डिवोर्स ले लिया और उसके बाद से मैं अकेले जो है कुछ भी कर रहा, ऐसे नहीं। जब समाधि लगी और ज्ञान हुआ कि कर्म खत्म हो गए, तब जाके डिवोर्स लिया मैंने शादी के 14 साल के बाद। तो ऐसा नहीं कि बंधन, ये सारे रिश्ते निभाए नहीं मैंने, सास ससुर और सब कुछ नहीं देखा, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ देखा, सारा घर परिवार देखा, सारा घर परिवार संभाला, और दूसरी तरफ मेरे माँ बाप बहुत जल्दी खत्म हो गए थे, तो मैं अपने भाई भाई छोटे भाई बहनों के लिए मैं माता भी हूं, पिता भी हूं, आज भी हूं, उनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाई फाइनेंशियली, उनकी शादियों की जिम्मेदारी उठाई, उनके बच्चों को देखा और आज भी देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कर्तव्य पूरे नहीं करते हम, अपने दायित्व पूरे नहीं करते हम, अगर हम घर से बाहर नौकरी करने निकल गए तो। नहीं, कोई अहंकार नहीं जाएगा मेरे अंदर कि आहा मैंने बहुत पढ़ लिया और मैंने तो अब मैं घर के काम क्यों करूं, या अभी भी अचार बनाती हूं मैं अभी भी अचार डालने का भी काम करती हूँ, खाना खाना खाने बनाने के साथ साथ और ये सब चीजें करने के साथ अपनी जॉब भी करती हूँ, बीइंग शिवा ये फाउंडेशन भी चला रही हूँ, आप लोगों को इतना सारा ज्ञान भी दे रही हूँ, जो पढ़ने आता है, जो सीरियस होता है, वैरागी होता है, उसको भी ज्ञान देती हूँ, उसकी उनकी क्लासेस भी लेती हूँ, अभी भी बहुत सारा काम कर रहा हूँ, अभी भी बेटे की कॉलेज की फीस भर रहे हो और जाके सब चीजें कर रहे हो, क्योंकि चेतना का केंद्र बुद्धि है, तो जीवन को बहुत आसानी से बिना समय नष्ट किए जिया जा सकता है, क्योंकि चेतना का केंद्र अगर बुद्धि हो जाता है तो हर पल हर क्षण आपको आपका एक निर्णयात्मक पल होता है, वो क्षण हर क्षण निर्णय ले रहे होते हो, डिसीजन ले रहे होते हो आप, कोई ना कोई या तो अपने अंदर के दुनिया को लेकर, अंदर के इनर वर्ल्ड को लेकर कि मैं क्या सोच रही हूँ, क्यों सोच रही हूँ, क्या हो रहा है, क्या क्या चल रहा है मेरे दिमाग में, वृत्तियों के स्तर पे क्या चल रहा है मेरे दिमाग में, तो एक हर पल एक निर्णय होता है, और या फिर बाहर क्या निर्णय लेना चाहिए, क्या करने के लिए क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, सब कुछ कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, कैसे चल रहा है, किसका जीवन कैसे निकल रहा है, कहाँ पे किस चीज को ठीक किया जा सकता है, बेहतर बनाया जा सकता है, उसके निर्णय के लिए होता है। तो हर वक्त निर्णय लेते रहने की एक अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाती है बचपन से आपकी। अरे भावना में उलझे रहोगे क्या, जब आप में से जितने लोग चाहे वो नारी है चाहे पुरुष है, सोच के देखो घर में कितना ही मियां बीवी का झगड़ा हो जाए, डॉक्टर क्या ऑपरेशन करने नहीं जाएगा, मेरे माता पिता दोनों डॉक्टर थे, तो क्या घर में पति पत्नी की तरह से आपस में भिन्न भिन्न नहीं करते थे, करते थे, आपस में लड़ाई करते थे तो करते थे, लेकिन ऑपरेशन करने जाना है तो जाते भी थे, ये थोड़ी कि नहीं नहीं आज ऑपरेशन नहीं होगा, आज मेरी अपनी बीवी से लड़ाई हो गई। भावनाओं को इतनी महत्व दे रखा है भारत के अंदर, हर वक्त भावनाओं में उलझे रहना, वो अजीब अजीब सीरियल देखते रहना और पता नहीं क्या क्यों। अब एक हम एक बहुत खराब बात करेंगे, बहुत दुखद डाटा है एक और जो इस बात से जुड़ा हुआ है, और वो ये बहुत दुख की बात है ये कि काम करने जाना, घर से बाहर निकलना काम करने जाना सिर्फ पैसे के लिए नहीं होता, कभी भी नहीं होता पैसे के लिए, एक्चुअली वो होता है आपके साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए, आपकी मेंटल इमोशनल हेल्थ के लिए होता है वो, और अगर नहीं होता तो भारत के अंदर 25 से 35 साल की गृहिणियों का सुसाइड रेट इतना हाई क्यों है, अलार्मिंग हाई रेट है वो सुसाइड का, बहुत दुख की बात है ये। और वो गृहिणियां हैं, काम कामकाजी महिलाएं नहीं है जो सुसाइड कर रही हैं, वो सारी की सारी गृहिणियां हैं, और उम्र देखो 25 से 35, जबकि समाज को, देश को, घर को, परिवार को देने के लिए आपकी बुद्धि का, आपके देह का, आपके जीवन का एक बिल्कुल प्राइम टाइम होता है, उस प्राइम टाइम पर वो आत्महत्या कर रही है। जानते हो, अंदाजा लगाने के लिए अगर मैं आपको बोलूं, कितने लोग थे अभी पीछे भारत के अंदर हल्ला मचा रहे थे ना, किसान किसान आत्महत्या कर रहे हैं, एक कंपैरिजन का डाटा बता रहे हो मैं आपको, किसान आत्महत्या कर रहे हैं और ये सब चीजें हो रही है और दुनिया भर का मीडिया में आ रहा है, लोग खड़े हो जा रहे हैं और बेकार का इतना हल्ला मचा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टियों के उसमें आ जा रहे हैं, कभी किसी ने सोचा कि किसान की आत्महत्या की रेट से दुगना रेट है ये सुसाइड करने का 25 से 35 साल की गृहिणियों का, दुगना कभी किसी मीडिया में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स की वेबसाइट पे जाकर विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को देखकर अपना ज्ञान कभी आप बढ़ाते हैं? क्यों है इतना, कितने दुख की बात है ये। और पता है जो सुसाइड कर लिया जिन्होंने, वो तो कर लिया, मैं उनकी बात बताती हूँ, अपने अनुभव से एक बात बताती हूँ आपको। जब मैं नोएडा में जॉब कर रही थी तो हम लोग, मैं वहीं नोएडा में रहती थी अपने पति और अपने बच्चे के साथ, तो हम लोग 7वीं मंजिल पर रहते थे और हमारे बगल वाली जो बिल्डिंग थी वो 15 मंजिल की थी। तो एक दिन सैटरडे था, सुबह सुबह मैं अपने चाय बना के अपना 7-7:30 बजे करीब मैं चाय अपनी बालकनी में खड़े होके पी रही थी, अचानक इतनी जोर से आवाज आई, ऐसा लगा जैसे बिल्डिंग गिर गई, क्या गिर गया, इतनी जोर से आवाज हुई। और उसके बाद जब मैंने नीचे झांक कर देखा सातवीं मंजिल से, वो दृश्य कभी भूला नहीं जा सकता। मेरे ही पड़ोस की जो हमारी जो साइड की बिल्डिंग थी और उसके अंदर नौवीं या पता नहीं दसवीं मंजिल से एक लेडी ने कूद कर आत्महत्या की थी। पंद्रह दिन तक मुझे नींद नहीं आई ये सोचकर कि क्या रहा होगा उसके जीवन में। और उनको हम देखते थे कपड़े वपड़े सुखाते हुए और इधर उधर नीचे वो मिल जाती थी, को हम देखते थे। तुरंत नीचे पुलिस आ गई, सब लोग आ गए और वो देखने जैसा दृश्य नहीं था। नौवीं मंजिल से शरीर नीचे गिरेगा, सर फटेगा तो क्या क्या दिखाई देगा, क्या दृश्य दिखाई देगा ना, देखने लायक बोलने लायक देखने लायक भी दृश्य नहीं था। और उनके घर में उनका बच्चा था, पता नहीं, याद नहीं है मुझे कि बेटा था कि बेटी थी, लेकिन उसके बाद उनके पति और उनके बच्चे पर जो गुजरी है वो मैंने अगले 1.5 साल तक देखा है। और ये मेरा एकमात्र अनुभव था जहां मैंने किसी को आत्महत्या करते देखा। और उसके बाद मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिल चुकी हूं, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं जिनके परिवार में उनकी मां ने सुसाइड किया है, अपने आप को पंखे से लटकाकर या जहर खाकर या फिर ऐसे ही ऊंचाई से बिल्डिंग से कूद कर। और आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो बच्चों के अंदर, वो आज वयस्क हैं लेकिन उनके अंदर वो जो एक ट्रॉमा बैठ जाता है ना, वो जो एक भावना बैठ जाती है ना कि उनकी मां किसी से बोली नहीं कि उनको क्या दुख था, उनकी मां ने किसी को, वो किसी से कह सकती थी, किसी से मदद ले सकती थी, इस हद तक चली गई वो दिमाग में अपने दुख के, इस हद तक चली गई कि उन्होंने पंखे से अपने आप को लटका लिया या कूद कर जान दे दी या जहर खा लिया। वो बच्चे आज वयस्क हैं और उनकी स्थिति देखकर मेरे भी आंख में आंसू आ जाते हैं, उनका दुख और उनकी स्थिति देखकर। और मैं सपने में भी कल्पना भी नहीं कर सकती हूं, मैं उनके दुख से दुखी हो सकती हूं लेकिन मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि उन बच्चों ने अपना जीवन कैसे निकाला है। उन घर वालों ने और स्पेशली सबसे ज्यादा तो उन बच्चों में, और उसके बाद से हमेशा के लिए, चाहे वो हस्बैंड की गलती हो ना हो, कितनी हो, क्या रीजन है आत्महत्या का, और चाहे वो पुरुष उसमें दोषी हो चाहे ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है, वो दोषी भाव में और दोषी की तरह ही देखा जाता है। अब उसके बच्चे भी उसको ऐसे ही देखते हैं, वो बच्चे कभी पिता को माफ नहीं कर पाते, कभी भी नहीं कर पाते। कितनी कहानियां सुना लो बच्चों को, कितने रीजन बता दो, चाहे वो 40 साल के वो बच्चे हैं हो जाएं, और ऐसे ही इतनी उम्र के लोगों की मैं बात कर रहा हूं कि 40-45 के भी आज भी लोगों से मिलती हूं जिनके घर में उनकी मां ने आत्महत्या की थी, कभी नहीं बाहर आते हैं। बहुत खराब, बहुत दुखद स्थिति है ये, और किसानों से दुगनी संख्या में गृहिणियां भारत की, भारत देश के अंदर आज की डेट में 25 से 35 साल की उम्र वाली आत्महत्या कर रही है। कभी कोई मीडिया मीडिया में नहीं आता है, कोई हल्ला नहीं मचाता है, कोई नहीं सोचता है कि क्या गलत हो रहा है समाज के अंदर, देश के अंदर क्या गलत हो रहा है, क्या हम गलत कर रहे हैं, क्या विचारधारा है जो गलत हो चुकी है, इसको सुधारना बहुत तेजी से जरूरी है। क्या कर रही है वो सारी की सारी पढ़ी लिखी और घर में बैठी हुई महिलाएं आज की डेट में। मेरा आपसे निवेदन है, अगर आप 25 साल के हो, 20 साल के हो, 22 साल के हो, 27 साल के हो, किसी भी साल के हो, और आपने पढ़ाई कर रखी है, बैचलर्स कर रखा है, मास्टर्स कर रखा है, कुछ भी कर रखा है, जाके बाहर नौकरी कर लो। क्यों? कि ये बच्चे तो पल जाएंगे, घर भी संभल जाएगा। 40 साल की उम्र के बाद आपके शरीर में जो बीमारियां घर करेंगी ना, क्योंकि आप सिर्फ भावनात्मक स्तर पे जीते चले जाओगे, बुद्धि को चलाने का मौका ही नहीं आएगा, चेतना को बुद्धि पर रखने का कोई कोई अवसर नहीं मिलेगा। भावनाएं बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगी। आज सास ने ऐसे कह दिया, आज ससुर ने ऐसे कह दिया, आज पति ने ऐसा नहीं किया, आज इसने ऐसा नहीं किया, आज उसने ऐसा नहीं किया, आज कुछ नहीं तो काम वाली नहीं आई, पता नहीं क्या क्या बेकार के नाटक। और बच्चे बड़े हो जाएंगे, बच्चे अपने आप बड़े हो जाते हैं, उनको संस्कार देना, चेतना देना, चेतना से जीवन सिखाना, वो आप तभी तो करेंगे जब आपको खुद को आता होगा। कैसे किसी और का जीवन सुधारोगे आप? कैसे अपने बच्चे को सिखाओगे कि तुम फालतू का भावनात्मक मत हो, ठीक है तुम हो रहे हो, जब तुम्हारी बुद्धि में आ जाएगी चेतना तो हम बात करेंगे बैठ के। या इतना भावनात्मक होना अच्छी बात नहीं है जीवन के लिए, जीवन को सार्थक बनाने वाली बात नहीं है ये। बच्चों को भी तभी चेतना से संस्कार दे पाओगे जब खुद की जागी हुई होगी, खुद की चेतना काम कर रही होगी और देह में नहीं घुसी हुई होगी या भावना में नहीं घुसी होगी, बल्कि बुद्धि पर और विवेक पर रहती होगी चेतना हमेशा। तभी आप किसी को, बच्चे को अच्छे संस्कार और अच्छी चीजें दे पाओगे। समय वक्त कम दोगे लेकिन वो एक बहुत ही क्वालिटी का टाइम होगा, क्वालिटी टाइम दोगे बच्चे को भी। ऐसा थोड़ी मैंने अपने अपने बच्चे को देने का, इतना सब कुछ काम करने के बाद, उसके बाद अपने अध्यात्म की यात्रा करने के बाद भी ऐसा थोड़ी मैंने अपने बच्चे को समय नहीं दिया, टाइम नहीं दिया, या आज भी नहीं देती हूं। आज भी चार पांच घंटे दुनिया भर का जीवन के ज्ञान का डिस्कशन उससे होता है, वो पूछने आ जाता है कुछ कुछ चीजें तो मैं उसको समझाती हूँ बेटा के। कार भी चलाने ले जाना सिखाती हूँ, टायर बदलना भी सिखाती हूँ, आईकिया का फर्नीचर कैसे बिल्ड होता है वो भी सिखाती हूँ, जितने काम, खाना बनाना भी सिखाती हूँ, सब चीजें सिखा, सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, चेतना बुद्धि पर है, कहीं और नहीं, कहीं और। अब तो समाधि लगने के बाद से कहीं और हो भी नहीं सकती है, लेकिन और पहले की भी मैं बात बता रही हूं, पहले भी ऐसा ही था। आप में से जितने पुरुष इस बात को सुन रहे हैं ना, जो या तो आज पति हैं या फ्यूचर में पति बनेंगे, ध्यान रखना इस बात का कि आपकी पत्नी कहीं बाहर निकलकर कोई भी जॉब, कोई भी चीज करने जरूर जाती हूं, नहीं अगर पैसा आ रहा है तो भी जाती हूं, क्योंकि बात पैसे की नहीं होती कभी भी, मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने की होती है। कितनी बार आप सुनते हो और देखते हो कि किसी के पास बहुत पुश्तैनी पैसा है, बिल्कुल बाप दादों का कमाया हुआ, के साथ पुश्ते बैठ के खाती रहे, उनके घर में तो लड़के भी बिगड़ जाते हैं, लड़के भी अगर काम ना करें, कुछ ना करें, तो वो पुश्तैनी पैसा सात पुश्त नहीं चलता, उसी पुश्त में डूब जाता है। क्योंकि चेतना से, चेतना को बुद्धि के केंद्र पे लाना उस बच्चों ने सीखा ही नहीं, उस पीढ़ी ने सीखा ही नहीं, तो सारा पैसा स्वाहा कर दिया, या उस पैसे से देह का नुकसान कर लिया, ड्रग्स लेके, अल्कोहल में डूब के, सारी देह की वृत्तियों में बिल्कुल ओवर इंडल्जेंस करके उस सारा पैसे का सत्यानाश कर दिया। अरे दान दिया जा सकता था, कुछ किया जा सकता था, अच्छा समाज के अंदर, संसार के अंदर कुछ भला किया जा सकता था, लेकिन नहीं, सब डुबो दिया। तो काम करना घर से निकलकर बहुत जरूरी है। तो जब ये वाली बात हम क्यों कर रहे थे कि महिला गुरु क्यों नहीं है, तो पहले आप इस बात का आंसर दीजिए कि महिला गुरु तो बाद की बात है, महिला टीचर क्यों नहीं है, साइंटिस्ट क्यों नहीं है, लॉयर क्यों नहीं है, पूरे ही विश्व में कम ही तो हैं, तो गुरु भी कम ही होंगी, क्योंकि गुरु बनने से पहले क्या चाहिए, गुरु कौन बन सकता है। मैंने पीछे एक वीडियो बनाया था ना कि बात सिर्फ वैराग की नहीं है, गुरु वो बन सकता है, इसमें बहुत पेशेंस है, क्योंकि सीखने वाला एक बार में सीखेगा नहीं, बहुत बार धीरे 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 चलते जाना होगा, तो बहुत पेशेंस की बात है गुरु बनने के लिए। पेशेंस बाहर, घर से बाहर निकलकर समाज में निकलकर काम करके आता है, सीखने की चीज होती है वो। मैं पेशेंस लेकर पैदा नहीं हुई थी। बाहर निकलकर कामों को करके अपनी गलतियों से हर चीज से सीखा कि पेशेंस रखना कितना जरूरी है। बच्चे को पालकर बाहर मैनेजर कोई मेरे सर पे काम कर रहा है उसकी बातें सुनकर पेशेंस कैसे रखा जाता है। चार पांच छह भाषाएं सीख सीख कर बाहर इंटरनेशनल लैंग्वेजेस और अपने भारत की भी और दो तीन लैंग्वेजेस सीख सीख कर दिमाग को तेज बनाना। कितने आप में से महिलाएं हैं, और आज मुझे पता है आप बहुत सारे लोग तो आज के बाद वीडियो देखने नहीं आएंगे इस वाले वीडियो को देखकर क्यों कि बहुत सारी महिलाओं में से आप में से बहुत यंग है महिलाएं, 30 की एज के आसपास हैं, 30 साल की उम्र के आसपास हैं, मुझे लिखती रहेंगी आप हिंदी में ही वीडियो बनाया करिए। कितनी देर लगती है अंग्रेजी भाषा सीखने में, क्या करेंगे हम हिंदी में वीडियो बनाकर। कोई दूसरी भाषा सीख लेने से अपनी मातृभाषा का अपमान नहीं हो जाता। इतनी छोटी नहीं होती है किसी देश की सभ्यता और भाषाएं कि अगर कोई हम दूसरी भाषा सीख लें तो उसका अपमान हो गया पहले वाली का, हमारी मातृभाषा का या राजभाषा का या राष्ट्रभाषा का। कोई अपमान नहीं हो जाता है 3, 4, 5, 10 लैंग्वेजेस सीख लेने से, बल्कि लैंग्वेज सीखने के ऊपर एक पूरी रिसर्च की गई है कि जितने लोग मल्टीलिंगुअल हैं जिन्हें एक से ज्यादा भाषाएं आती हैं उनके दिमाग में एक डिफरेंट तरह का न्यूरल पाथवे बिल्ड हो जाता है जिससे कि उनकी बुद्धि की और इंटेलेक्ट की शार्पनेस बढ़ जाती है, बहुत तेज कुशाग्र बुद्धि हो जाती है नई भाषा सीखने से और बोलने से। तो कितना मुश्किल काम है वो जो भारत में कहीं भी जाओ बहुत सारे टूरिस्ट गाइड मिल जाते हैं ना, वो बेचारे वो लोग हैं जिनको ठीक से पढ़ाई का अवसर नहीं मिला है, ठीक से पढ़े लिखे नहीं है, कभी कोई 8वीं के बाद स्कूल नहीं गया है, कोई 10वीं के बाद स्कूल, लेकिन अंग्रेजी कैसे बोलते हैं, बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास अंग्रेजी बोलते हैं वो। यहां पर भाषाओं का कंपैरिजन नहीं कर रही हूं मैं कि कौन सी भाषा बहुत अच्छी है कौन सी नहीं है। अरे हर भाषा की कोई ना कोई सीमा होती है, कोई ना कोई लिमिटेशन होती है हर भाषा की, कोई भी भाषा दुनिया की उठा लो आप। तो कौन सी भाषा अच्छी है नहीं अच्छी है उसकी बात नहीं हो रही, बात हो रही है एक इंटरनेशनल भाषा की तरह से जिसे हर देश ने स्वीकार किया है इंटरनेशनल भाषा की तरह। उस भाषा को सीख लेने में कितना वक्त लगता है, 10 दिन, चलो बहुत हद से 1 महीना, लेकिन नहीं सीख रहे। ज्ञान सिर्फ इस भाषा में मिलेगा तो लेंगे और बाकी की भाषाओं में नहीं मिलेगा तो नहीं लेंगे, ये क्या बात हुई। बाहर से लोग उठते हैं, अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया से लोग उठते हैं और संस्कृत पढ़ लेते हैं। अभी मेरी एक अमेरिका की स्टूडेंट है, वो 50 साल से ऊपर की हैं, संस्कृत पढ़ रही हैं बैठ के पूरी, जिससे उनकी समझ में मंत्र आ जाए और श्लोक आ जाए और सूत्र आ जाए और सब समझ में आ जाए और वो ओरिजिनल साहित्य पढ़ लें, पढ़ने की क्षमता रख पाए। मैंने कितना सारा रशियन साहित्य पढ़ा रशियन भाषा सीख कर। लेकिन नहीं, जो भाषाओं के तर पर ही बहस कर रहा है और भाषाओं को ही अच्छा बुरा ऊपर नीचे और भाषाएं कौन सी सीख ली, किसमें बोल दिया, क्या लिख दिया, किसमें क्यों लिख दिया, उस भाषा में क्यों लिख दिया, तो अपमानित हो जा रहा है, उसके अहंकार को चोट लगती, वो तो वैसे भी किसी अध्यात्म के रास्ते में कहीं जाएगा नहीं जिसके अंदर इतना कुतर्क और इतनी कुबुद्धि अभी भरी पड़ी है। इतनी बुद्धि में अभी इतनी अच्छी बुद्धि नहीं आई है और तमस भरी पड़ी है, वो तो वैसे भी कहीं जाएगा नहीं। तो क्या बोले, अभी कोई बहुत अच्छा आश्रम मिलेगा आपको चेन्नई में जहां पर तमिल जहां पर बहुत ज्यादा बोली जाती तो जाओगे नहीं, कोई शास्त्र या कोई चीज बहुत अच्छी सिर्फ तमिल में ही है तो पढ़ोगे नहीं, भाषा नहीं सीखोगे, तेलुगु में है तो नहीं सीखोगे, मलयाली में है नहीं सीखोगे, बांग्ला में है, गुजराती में है, मराठी में है, कोई बहुत अच्छा साहित्य या कोई ज्ञान की बात लिखी हुई है कुछ चीज पढ़नी है अगर आपको और वो सिर्फ उसी भाषा में अवेलेबल है तो सीख के पढ़ोगे नहीं। अरे सीखो पढ़ो, ऐसे ही बाहर निकलने में किसी देश का कंट्री कल्चर कभी नहीं समझ सकते आप जब तक कि उस भाषा के का साहित्य नहीं पढ़ोगे आप। उस लैंग्वेज का, उस देश का सारा इतिहास सब कुछ वहां के लिटरेचर में होता है। तो लिटरेचर पढ़ोगे ही नहीं तो कहां से बुद्धि में कुछ आएगा? बुद्धि बुद्धि का विकास कैसे होगा? सोच सोच का विकास कैसे होगा? विचारधारा का विकास कैसे होगा? आपका खुद का विकास कैसे होगा? तो फीमेल गुरु बनने के लिए भी ना, कोई सा भी गुरु बनने के लिए कई कई सारी भाषाएं जरूरी होती हैं, बहुत साहित्य और बहुत अनुभव की जरूरत होती है। सिर्फ एक कोने में बैठकर और वहां हिमालय पे तपस्या करके, और चाहे वो नारी देहधारी आत्मा हो या पुरुष देहधारी आत्मा हो, कहीं पे ऐसी जगह में तपस्या करके तो समाधि तो लग जाएगी, मोक्ष तो मिल जाएगा, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन गुरु नहीं बन सकते। गुरु बनने के लिए जीवन का अनुभव चाहिए, वो घर बैठकर नहीं आएगा। कैसे ज्ञान दोगे कि आपको कैसे समझ में आएगा कि ऑफिस से आने के बाद कितने काम होते हैं, और लेडीज की लाइफ कैसी होती है, जनारियों की, महिलाओं की लाइफ कैसी होती है, पुरुष की लाइफ कैसी होती है, बाहर जाके कॉर्पोरेट में काम करके नहीं आओगे तो क्या पता आपको? संसारी लोगों को क्या को उनके ही अज्ञान से बाहर लाने के लिए क्या अनुभव है? किस तरह से बात करोगे? हाँ, कोई भावना में रोता किसता आ जाएगा, उसको छू दोगे, उसको आशीर्वाद दे दोगे, शायद किसी के लिए उतना भी इनफ हो। तो नहीं होते हैं लोग, नहीं ठीक से। कोई भी जो बाहर निकल गया, जिसकी विचारधारा और जिसका सब कुछ बहुत विकसित हो गया, और जो बहुत अनुभवी हो गया अंतर्राष्ट्रीय तरीके से या राष्ट्रीय तरीके लेवल पर भी, अगर कोई एक राष्ट्र, एक नेशनैलिटी, एक कंट्री के लेवल पर भी अगर कोई बहुत अनुभवी हो जाता है, वो ही समझा सकता है, वो उसी की ही बात समझ में आ सकती है। घर में बैठा कूप मंडूक इंसान कुछ नहीं समझा सकता किसी को, उसको पता ही नहीं है। तो ये बहुत दुखद बात है कि महिला गुरु तो क्या, महिला टीचर भी उतनी नहीं है, महिला साइंटिस्ट भी नहीं है, महिला डॉक्टर भी नहीं है, और महिला कॉर्पोरेट में भी नहीं है, महिला इंजीनियर भी नहीं है, महिला में बहुत कुछ महिला नहीं है भारत के अंदर। और सब देशों की मैं बात नहीं करूंगी इस क्वेश्चन का आंसर देने में, क्योंकि बाहर, हाँ ठीक है, बाहर भी कम है ना, लेकिन इतना कम, 16%, 16-17%, इतना कम तो कहीं भी नहीं है। सब जगह 60%, 70%, 55% से ऊपर ही है सब जगह महिला पार्टिसिपेशन। तो डेफिनेटली वहां महिला गुरु ज्यादा देखने को मिलती हैं उन देशों में, हर तरह की टीचर, हर तरह के प्रोफेशन में फीमेल्स बहुत ज्यादा मिलती हैं, है ना। और सबके पास घर है, सबके पास बच्चा। मेरे साथ की बहुत सारी जो मेरे साथ लड़कियां थी, उन्होंने पढ़ लिया, लिख लिया, वो कहीं कहीं बाहर चले गए, निकल गए, और बहुत अनुभवी हो गए, सीख गए, उनके उन्होंने क्या बच्चे नहीं पाले? सब बच्चे पाल रहे हैं यहाँ पर। कोई हमारे पास काम वाली नहीं होती है, कुछ नहीं होता, फिर भी हम अपने सारे काम खुद करते हैं, और ऊपर से इतना समय भी रखते हैं कि इतना सब कुछ कर लें। और ऐसा नहीं कि हम लोगों ने कोई मनोरंजन नहीं किया, सिर्फ काम 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 करे चले जा रहे थे, ऐसा तो नहीं है। प्रेम भी किया, शादीशुदा भी रहे, मनोरंजन भी किए हर तरह के। हाँ ठीक है, चेतना को लुप्त करने वाले मनोरंजन नहीं किए, बुद्धि से जो मनोरंजन किए जा सकते हैं उतना मनोरंजन भी किया, घुमा फिरा भी बहुत सारा, लक्ष्मी का अच्छे से भोग भी किया कि हाँ ठीक है लक्ष्मी है, बिना लक्ष्मी के संसार में, बुद्धि पर लक्ष्मी नहीं बैठेगी तो बुद्धि और क्या जीवन में होगा, और कहाँ क्या होगा। सबसे पहले लक्ष्मी बुद्धि पर बैठती है, फिर वो माँ लक्ष्मी जीवन में उतरती हैं, शरीर पर होती हैं, तो भोग उस हिसाब से होता है। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज है, बहुत सारी चीज बातें हैं, उनको समझिए कि महिला गुरु क्यों नहीं है। और आप में से जितनी महिलाएं गृहणियां हो चुकी हैं और घर बैठ गई हैं, और जबकि वो अच्छा खासा पढ़ी हुई होती हैं, सब कुछ होता है, वक्त पूरा का पूरा समय और जीवन सब नष्ट कर रही हैं, बच्चे आज 4-5 साल के हैं, थोड़े 10-12 साल के होते तक वो अपनी शक्ल देखना पसंद नहीं करेंगे, उनका अपना जीवन होगा, अपना व्यक्तित्व का विकास हो रहा होगा, उन पर इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। उनकी परेशानी है कि आप उन पर इतना सारा ध्यान देते रहते हैं, कुछ ढूंढ लो, जाके कुछ कर लो। तो घर से बाहर निकलिए, जीवन को सार्थक बनाइए, मनुष्य जीवन को सार्थक बनाइए। भावना 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 को इतना प्रधानता देने की जरूरत नहीं है जीवन में। फिर ऐसे मेरे साथ में जो लोग थे, लड़कियां थी, और जिन्होंने कभी घर से निकलकर इतना कुछ किया नहीं, कुछ भी नहीं किया, तो फिर वो दोस्ती नहीं रह जाती। क्यों? कि वो सुनाते रहेंगे अपना भावनात्मक हालचाल हर वक्त, भावनाओं का रोना पीटना, और हम सारे बुद्धि में हैं, हमारे पास फुर्सत नहीं है। तो फिर आप कहते हो कि दो बाहर जाके लोग दोस्ती तोड़ देते हैं। नहीं, दोस्ती नहीं तोड़ देते। दो लोग दोस्ती सिर्फ टूटती ही तभी है, रिश्ता दूर होता तभी है, जब आप कभी भी बुद्धि में और चेतनता से बात ही नहीं करते। कभी कभार ठीक है कि चलो अपने भावनाओं में आके कुछ कह दिया या बता दिया या समझा, अपना दिल हल्का कर लिया, कभी कभार ठीक है। लेकिन अगर कोई समस्या लेके आप हर बार आते हो तो उसका आपको कोई सोल्यूशन बताया जाता है, आपको करना है ही नहीं, क्योंकि आप तो सिर्फ भावनाओं का के बहाव में, अपने बहाव में आप चाहते हो सामने वाला बह जाए, वो भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ना करे जैसे आप नहीं कर रहे, तो कितनी बार सुनेंगे कि सास ने ये कह दिया, कि ससुर ने ये कह दिया, कि पति ने ऐसा कह दिया, कि बच्चे बड़े होके बर्बाद हो गए। कितनी बार सुने ये चीज़ें, है ना? तो सोचिए ये सब बातों को। काम करते कोई पैसे के लिए नहीं है, मैंने भी कोई पैसे के लिए नहीं किया था शुरू। मुझे तो आईटी का और टेक्नोलॉजी का और सब चीजों का इतना अच्छा सा मुझे समझ में आ गई थी वो चीजें, और मुझे इतनी अच्छी लगने लग गई थी। आज भी मैं बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के और बहुत सारे रिसर्च जर्नल पढ़ती हूँ। फिजिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट होता है, और जितनी भी आजकल की डेट में रिसर्च होती है, साइंटिफिक रिसर्च होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, आईटी के साइड पे ब्लॉकचेन हो गया, ये टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी, सब दुनिया भर के रिसर्च पेपर में अभी भी पढ़ती रहती हूँ बैठ के। शौक है, मेरे को उस चीज का ज्ञान है, अनुभव हो चुका, 25 साल का मेरा करियर हो चुका। तो बुद्धि से जीना है और घर से बाहर निकल के कुछ करना है समाज को, तभी वो बाहर का जीवन सार्थक कर पाएंगे। बुद्धि में चेतना रहेगी तो घर में भी सार्थक हो जाएगा, है ना? तो सोचिए कि फीमेल गुरु नहीं है तो आप में से कौन बनेगा उठ के, आप में से कितनी महिलाएं हैं जो पहले राष्ट्रीय स्तर पे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अपने आप को उठाएंगी, अपने जीवन को चलाना सीखेंगी खुद से। और एक कार्मिक बात भी होती है, ठीक है, कर्म की बात भी होती है ये। किसी दूसरे का कर्म नहीं होना चाहिए आपको रोटी खिलाना। आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो घर संभालती हूं इसलिए सामने वाला आपका पति आपको कमाने जा रहा है, सब कुछ कर रहा है। नहीं, जब कर्म के हिसाब किताब की बात आती है तो आप कितना ले चुके और कितना दिया था बदले में, उसका हिसाब किताब होता है। कोई दूसरा नहीं कमाएगा, कोई दूसरा आपको नहीं खिलाएगा, नहीं वस्त्र देगा, नहीं घर देगा, ये कर्म का हिसाब किताब है। आप खुद कर्म करेंगी, खुद आगे जाएंगी, और अपने कर्मों को का निर्वाह खुद ही करना होगा, खुद के प्रयत्न से ही होगा। मुक्ति मोक्ष दूसरे के सर पर बैठकर खाने से नहीं मिलता है। और वो तो बहुत दूर की बात है मुक्ति मोक्ष मिलना, पहले तो जीवन में ही जीवन ही सुधार लीजिए, है ना? तो सोचिए आप में से कौन उठकर गुरु बनेगा, फीमेल गुरु। इस समस्या को समाप्त करने के लिए क्या करना है? अगर महिला गुरु कम है समाज में तो इसकी समस्या का सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन आप में है, सोल्यूशन आप हो। आप में से बहुत सारे लोग पुरुष जो देख रहे हैं इस वीडियो को, और जो अपनी बहनों को, अपनी माता को, अपने पत्नी को, और अपने कजन्स को, और अपने परिवार की सारी महिलाओं को काम करते नहीं देखते, उन्हें भेजिए काम करने के लिए, उनको प्रेरित करिए, जाने दीजिए उनको कुछ ना कुछ करने के लिए घर से बाहर, क्योंकि सोल्यूशन आप ही लोग हो, है ना? कोई और उठेगा मेरे अलावा कोई और उठेगा? तो भर दो समाज को, संसार को महिला गुरुओं से। एक आखिरी चीज, जो थोड़ी सी वैराग्य के स्तर से समझने की है, महिला गुरु क्यों कम है। चलो इस बात को अब हम संसारी लेवल पे नहीं, दूसरे ऊपर के लेवल पे देख लेते हैं। ये जितने भी आध्यात्म के रास्ते पर क्रिया योग, ऐसा योग वैसा योग, ये सब कुछ सिखाया जाता है, वो सब क्या है? समर्पण करने का तरीका है ना। आपका अंत में, हर साधना का अंत क्या है? कि आपको समर्पण हो जाए। तो जब समर्पण की तरफ ले जा रहे हैं तो ये वाली बात वैसे ही है कि हम आपको तैरना सिखा रहे हैं जिससे कि एक दिन आप डूब जाओ। क्यों? कि डूबना तो सिखाया नहीं जा सकता, जीना सिखाया जा सकता है, मरना तो नहीं सिखाया जा सकता। तैरना सिखाया जा सकता है, डूबना नहीं। प्रेम करना भी नहीं सिखाया जा सकता, भक्ति भी नहीं सिखाई जा सकती। तो नारी तो जीकर ही जीवन बता सकती है कि वो कितने समर्पण में है, कि समर्पण क्या है, प्रेम क्या है, डूब जाना क्या है। किसी दूसरे मनुष्य के लिए, अपने जीवन के लिए या परमात्मा के लिए सिखाया नहीं जा सकता है। वो सिर्फ जीवन जीकर दिखाया जा सकता है कि समर्पण क्या है ना। तो महिला गुरु तो क्या, किसी भी गुरु की जरूरत नहीं है। गुरुओं की जरूरत सिर्फ आपके दिमाग को है। आपको, आप समर्पण के रास्ते से ना हट जाओ, वो सिखाने के लिए है बस। समर्पण तो सिखाया नहीं जा सकता, ना प्रेम में, ना भक्ति में, और ना किसी और आत्मा को, ना परमात्मा को। डूबना नहीं सिखाया जा सकता। सोचिए इन सब बातों को, विचार करिए और खड़े होइए उठकर। नमस्ते, जय शिवाय।